अब 14वीं कारिका का अवतरण बताया जा रहा है कि ननु असत्वभूत क्रियायाः धात्वर्थत्वे। धातु का अर्थ जो है वह क्रिया है, व्यापार है, या तो फाइनल हो गया। अब इसमें बात ये आ रही है कि क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सत्वभूत क्रिया और एक असत्वभूत क्रिया। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, ऐसे फिर भी मैं बता दूं, सत्वभूत क्रिया और असत्वभूत क्रिया, ये जो दो प्रकार की क्रिया है, इसमें सत्वभूत क्रिया को ना सिद्ध क्रिया भी कहते हैं और असत्वभूत क्रिया को साध्य क्रिया कहते हैं अथवा साधन क्रिया कहते हैं। तो सत्वभूत क्रिया हो गया सिद्ध क्रिया, और असत्वभूत क्रिया है वह है साध्य क्रिया अथवा साधन क्रिया। तो यह जो धातु का अर्थ क्रिया माना गया है, ये कौन सी क्रिया माना गया? तो कहते हैं कि असत ननु असत्वभूत क्रियाया धात्वर्थत्वे, कि असत्वभूत जो क्रिया है वह धातु का अर्थ है। असत्वभूत क्रिया मतलब साध्य क्रिया अथवा साधन क्रिया, वह अगर धातु का अर्थ है तो पाकः इत्यत्र अपि, पाकः प्रयोग जो बनता है पच धातु से घय प्रत्यय करके जो पाकः बनता है, यहाँ पर भी पच धातु है, तो इस पच धातु का भी अर्थ जो है वह असत्वभूत क्रिया अर्थ होगा, क्योंकि आप धातु का अर्थ मानते हैं असत्वभूत क्रिया, तो पाकः में जो पच धातु है उसका भी जो है असत्वभूत क्रिया ही अर्थ निकलेगा। तो पाकः इत्यत्रापि तत्प्रत्ययापत्ति, यहाँ जो प्रत्यय है उसका अर्थ है बोध, तद बोधापत्ति, माने जैसे पचति में पच से असत्वभूत क्रिया का बोध होता है, ऐसे ही पाकः जो कृदंत शब्द है, घयंत शब्द है, इसमें भी असत्वभूत क्रिया के प्रत्यय की आपत्ति होगी, माने असत्वभूत क्रिया के बोध की आपत्ति होगी। इस पर कहते हैं कि नौच इष्टापत्ति, ये जो असत्वभूत क्रिया का की बोधापत्ति है इसको आप इष्टापत्ति नहीं मान सकते, ये इष्टापत्ति नहीं है, ये अनिष्टापत्ति ही है। क्यों? तो कृदभी तो भावो द्रव्यवत प्रकाशते इति भाष्य विरोधात्। अगर आप पाकह में भी ये तत्प्रत्ययापत्ति मानेंगे, माने असत्वभूत क्रिया का बोध मानेंगे, तो भाष्य से विरोध होगा, इसीलिए भाष्य से विरोध न हो इसीलिए यह तत्प्रत्ययापत्ति जो है यह अनिष्टापत्ति ही है, यह इष्टापत्ति नहीं है। अब कैसे विरोध होगा भाष्य से? तो भाष्य में कहा है कि कृत अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, कि कृत प्रत्यय से जो अभिहित भाव होता है, अभिहित माने उक्त और भाव माने व्यापार, तो कृत प्रत्यय के द्वारा जो व्यापार अर्थ उक्त होता है वह व्यापार अथवा क्रिया द्रव्यवत प्रकाशते, वह द्रव्य की तरह जो है प्रकाशित होती है क्रिया। तात्पर्य क्या है कि द्रव्य में, द्रव्य स्थल में जो क्रिया रहती है न, वो सिद्ध क्रिया रहती है, और सिद्ध क्रिया जो होती है उसमें लिंग का अन्वय होता है, संख्या का अन्वय होता है। मैंने पीछे बताया होगा कि लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम, कि लिंग से जो अन्वित हो, अन्वित हो माने संबंधित हो, और संख्या से जो अन्वित हो वही द्रव्य होता है। तो द्रव्य वाली जो क्रिया होती है वह सिद्ध क्रिया होती है, उसमें लिंग संख्या का अन्वय होता है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। यदि आप पाकह में साध्य क्रिया अर्थ मानेंगे तो भाष्यकार ने जो कहा है कि सिद्ध क्रिया अर्थ निकलता है कृत प्रत्यय में, उससे तो विरोध होगा ना, इसीलिए यह दोष दिया। अब एक बार फिर से पंक्ति देख लीजिए कि ननु असत्वभूत क्रियाया धात्वर्थत्वे, कि असत्वभूत क्रिया अर्थात साध्य क्रिया अथवा साधन क्रिया अर्थ अगर धातु का मानेंगे तो पाकः इत्यत्रापि, तो पाकः यहाँ पर भी पच धातु है, तो यहाँ पर भी तत्प्रत्ययापत्ति होगी, माने साध्य क्रिया का बोध होने लगेगा। नौच इष्टापत्ति, इस बोध को आप इष्ट नहीं कह सकते, यह बोध अनिष्ट ही है, क्योंकि इष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि भाष्यकार से इसका विरोध होगा, भाष्य में कहा गया है कि कृदंत में जो व्यापार अर्थ होता है वो द्रव्यवत प्रकाशित होता है, अर्थात सिद्ध व्यापार वहाँ अर्थ निकलता है, सिद्धा क्रिया अर्थ निकलता है, जिसका कि लिंग और संख्या के साथ अन्वय होता है। तो यदि आप साध्य क्रिया अर्थ मानते हैं पाकह में, तो यह सिद्ध क्रिया वाली बात जो भाष्यकार की है उससे विरोध होगा। इस पर 14वीं कारिका में इसका समाधान किया गया है कि आख्यात शब्दे भागाभ्याम साध्य साधन रूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स्वघयादि स्वपिक्रमः। इसमें जो आख्यात शब्दे है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी जो है ना ये बात आती है। इसमें आख्यात शब्द में एक शेष हुआ है, यहाँ आख्यात का अर्थ करना है तिंगंत और एक शेष है ना, जैसे रामों का मतलब होता है दो राम, इसी तरह से यहाँ आख्यात का अर्थ होगा दो तिंगंत। तो आख्यात शब्द मतलब दो तिंगंत शब्दों में, भागाभ्याम माने दोनों तिंगंतों से क्या होता है, तो साध्य साधन रूपता, एक भाग वाला जो तिंगंत है उससे साध्य क्रिया अर्थ निकलता है और दूसरा भाग जो है तिंगंत का उससे साधन क्रिया अर्थ निकलता है, वही है साध्य साधन रूपता। प्रकल्पिता यथा शास्त्रे, शास्त्र में जिस तरह से यह प्रकल्पित है, प्रकल्पित है माने स्वीकृत है, क्या कि एक आख्यात से जो है एक तिंगंत से साध्य क्रिया अर्थ और दूसरे आख्यात से साधन क्रिया अर्थ निकलता है, यह जो प्रकल्पित है शास्त्र में स्वघयादि स्वपिक्रमः, वह घयादि प्रत्यय के स्थल में जैसे पाकह इत्यादि में भी वही क्रम जो है पालन करने के योग्य होता है। अर्थात जैसे पाकह में दो पार्ट है, एक है पच दूसरा है घय, तो पच वाले पार्ट से जो है साध्य क्रिया अर्थ निकलेगा और घय वाला जो पार्ट है प्रत्यय वाला उससे सिद्ध क्रिया अर्थ निकलेगा। तो इस तरह से ये जो आपत्ति दी गई थी कि अगर आप साध्य क्रिया अर्थ मानते हैं पच धातु का, तो पाकह में भी पच धातु है वहाँ भी साध्य क्रिया अर्थ निकलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में ये क्लियर बताया गया है कि घय आदि से जो है सिद्ध क्रिया अर्थ निकलता है और धातु जो है पच से साध्य क्रिया अर्थ निकलता है, तो इसलिए इस तरह की प्रत्ययापत्ति नहीं होगी, माने पाकह में सिद्ध क्रिया की ही का ही बोध होगा, साध्य क्रिया का बोध नहीं होगा। यही बात भूषणकार आगे लिखते हैं कि आख्यात शब्दे पश्य मृगो धावत इत्यादि, मैंने कहा था ना आख्यात शब्द माने दो आख्यात शब्दों में, माने दो तिंगंत शब्दों में, माने जिस वाक्य में दो तिंगंत का प्रयोग रहता है वैसा वाक्य हमें लेना है आख्यात शब्द से। तो यहाँ पश्य मृगो धावत लिया, यहाँ दो तिंगंत है, एक है पश्य दूसरा है धावती, तो आख्यात शब्द का उदाहरण हो गया पश्य मृगो धावत इत्यादि, माने इत्यादि में भागाभ्याम, भागाभ्याम का अर्थ क्या तिंगंताभ्याम, माने दोनों तिंगंतों के द्वारा, माने पश्य तिंगंत के द्वारा और धावती तिंगंत के द्वारा। प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति विवरणकार उक्तम अपव्याख्यानम, ये विवरणकार एक हुए हैं जिन्होंने व्याख्या की है भूषण कारिका की, उन्होंने आख्यात शब्द का भागाभ्याम का अर्थ किया है प्रकृति भाग और प्रत्यय भाग, यह जो अर्थ किया है यह अपव्याख्यान है, माने अनुचित व्याख्यान है, यहाँ पर भागाभ्याम का अर्थ प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम नहीं करके तिंगंताभ्याम अर्थ ही करना चाहिए, अगर ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो पचति इत्यत्रापि भागद्वयसत्वात्, फिर पचति भवति सब में भी जो है प्रकृति प्रत्यय भाग होता ही है, तो यहाँ पर भी जो है साध्य क्रिया और सिद्ध क्रिया दोनों का बोध होने लगेगा, इसीलिए भागाभ्याम का अर्थ प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम न करके तिंगंताभ्याम ही करना चाहिए। आगे लिखते हैं साध्य साधन रूपता यथाक्रमम ग्राह्या, जैसे पश्य मृगो धावती आख्यात शब्द का उदाहरण है, इसमें प्रथम जो तिंगंत है पश्य उससे साध्य रूपता निकलती है और दूसरा जो तिंगंत है धावती उससे साधन रूपता निकलती है, साध्य रूपता साधन रूपता मतलब साध्य क्रिया और साधन क्रिया। अब साध्यत्व क्या है, तो ये बात पहले भी आ चुकी है, साध्यत्व क्रियांतर आकांक्षा अनुत्थापकता अवच्छेदक रूपवत्वम, इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पर अन्य क्रिया की आकांक्षा का उत्थान न हो ऐसा जो धर्म है वह होता है साध्यत्व धर्म। और साधनत्व क्या होता है, तो कारकत्वेन अन्वयित्वम साधनत्वम, माने कारकत्वेन माने कारक रूपेण अन्वयित्वम, जिसका अन्वय होता हो वह हो गया साधन। ठीक है, तो कारक के रूप में जिसका अन्वय हो वह कहलाएगा साधन। अब यहाँ पर पश्य जो है उसमें साध्यत्व है, क्योंकि पश्य सुनने के बाद क्रिया किसी अन्य क्रिया की आकांक्षा का उत्थान नहीं होता है। और ये जो है धावती, ये धावती जो है इसमें से साधन क्रिया अर्थ निकलता है, धावती में साधनत्व है क्योंकि कारकत्वेन अन्वयित्व है इसमें, माने धावती कर्म कारक है और इस कर्म कारक का अन्वय जो है पश्य क्रिया में होता है, तो कारकत्वेन अन्वयित्वम इसमें चला गया धावती में, इसलिए धावती के द्वारा साधन क्रिया अर्थ निकलता है। स्व घयादिस्वपि, ये कारिका में जो कहा गया स्व घयादिस्वपि क्रमः, उसका बताते हैं कि प्रकृत्या साध्यावस्था, माने जैसे पाकह है इसमें प्रकृति के द्वारा साध्यावस्था प्रतीत होगी और प्रत्ययेन साधनावस्था, और प्रत्यय से साधनावस्था प्रतीत होगी, माने साधन क्रिया प्रतीत होगी। इयान परम विशेषः, ताकि इयान माने इतना जो है, इयान माने इतना, परम विशेष विशेषा माने भेदः, माने इतना भेद इसमें जरूर है दोनों में, किन दोनों में, साध्यावस्था और साधनावस्था में, अथवा साध्या क्रिया और साधन क्रिया में ये विशेष है, ये अंतर है क्या, कि घयादि उपस्थाप्या लिंग संख्या अन्वयिनी कारकान्वयिनी च, कि घय आदि प्रत्यय से जो उपस्थाप्य होता है क्रिया, उपस्थाप्य मतलब बोध होने वाली क्रिया, तो घय आदि प्रत्यय से जो बोध होने वाली क्रिया है वह क्रिया कैसी होती है, तो लिंग संख्या अन्वयनी होती है, माने उस क्रिया में लिंग का भी अन्वय होता है और संख्या का भी अन्वय होता है, और कारकान्वयनी च, और घय से उपस्थित क्रिया का कारक के रूप में अन्वयित्व भी रहता है। किंतु आख्यांतांतो पातातु नेवम, किंतु आख्यात के द्वारा, तिंगंत के द्वारा जो क्रिया का बोध होता है वह न एवं, वह ऐसा नहीं होता, माने उसमें लिंग संख्या का अन्वय नहीं होता है, केवल एक ही चीज जो है दोनों में समान है, क्या, कारकान्वयिनी वाली बात जो है, कारकत्वेन अन्वयित्वम वाली बात जो है, ये घय से उपस्थित जो क्रिया है उसमें भी होता है कारकान्वयित्व, और पच धातु से जो उपस्थित क्रिया होती है उसमें भी कारकान्वयित्व रहता है, इतनी समानता है। और अंतर क्या है कि पच ये घय वाली क्रिया में लिंग संख्या का अन्वय होगा और पच धातु वाली क्रिया में लिंग संख्या का अन्वय नहीं होगा। तथापि कारकत्वेन अन्वयित्व मात्रेन दृष्टांत दाष्टांतिकता इत्यवधेयम्, कारिका में जो उदाहरण दृष्टांत बताया गया कि घयादि में जिस तरह से क्रम होता है बोध का क्रम, उसी तरह से ये धातु में भी होता है, यह जो दृष्टांत दाष्टांतिक बताया गया इसमें यही सोच करके कि कारकान्वयित्व जो है वह दोनों में है, माने घय से उपस्थित जो क्रिया होगी उसमें भी कारकान्वयित्व है और धातु से जो पचादि धातु से जो क्रिया उपस्थित होगी उसमें भी कारकान्वयित्व है, तो कारकान्वयित्व धर्म के की समानता के आधार पर दृष्टांत दिया गया कि स्व घयादि स्वपि क्रमः, माने घयादि की तरह ही जो है पचादि धातु की क्रिया को भी मानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी बात समान है दोनों में, वही कहा कि तथापि कारकान्वयित्व मात्र है ना, चूंकि दोनों ही क्रिया घय उपस्थापित क्रिया और पच उपस्थापित क्रिया दोनों में ही कारकान्वयित्व होता है, माने कारक के रूप में उसका अन्वय होता है, इसीलिए दृष्टांत दाष्टांतिकता दोनों में है। दृष्टांत हो गया कौन, घयादि, और दाष्टांतिक कौन हो गया, पचादि। तो घयादि जो दृष्टांत है और पचादि जो दाष्टांतिक है, इन दोनों में यही समानता है कारकान्वयित्व, और असमानता क्या है, लिंग संख्यान्वयित्व, ये असमानता है। इस तरह से बता करके आगे कहते हैं कि न च घयन्ते धातुना तथा अभिधाने माना भावा, अभी क्या हुआ कि घयंत जो शब्द है पाकह इत्यादि, उसमें सिद्धा क्रिया प्रतीत होती है, ये जो बात बताई गई उसके कहते हैं कि तथा अभिधाने माना भावा, कि ऐसा अभिधान होने में माने ऐसा बोध होने में प्रमाण का अभाव है, न माने ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रमाण क्या है, कहते हैं कि ओदनस्य पाकः इति कर्म षष्ठ्या मानत्वात्। ओदनस्य पाकः में ओदनस्य में षष्ठी हुई है और आगे पाकः है, घयंत पाक शब्द है। यहाँ जो कर्म में षष्ठी हुई है किस सूत्र से? कर्तृकर्मणो कृति से। वह जो षष्ठी है ओदनस्य पाकः में, ओदनस्य में वह षष्ठी ही प्रमाण है कि यहाँ पर पच धातु का अर्थ जो है वह सिद्ध क्रिया है। अगर वो नहीं हो तो यहाँ पर षष्ठी होगी ही नहीं, क्योंकि सिद्ध क्रिया नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो कर्तिकर्मणो कृति से षष्ठी नहीं हो पाएगी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि न च अध्याहृत तिंगंत क्रियान्वयात षष्ठी, कहा कि ऐसा है कि ओदनस्य पाकः में भवती क्रिया का अध्याहार कर लेंगे, आक्षेप कर लेंगे, माने ओदनस्य पाकः भवती, और भवती क्रिया में अन्वय होने के कारण यहाँ कर्म बन जाएगा ओदन और फिर षष्ठी हो जाएगी। तो कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कर्तिकर्मणोकृति सूत्र से जो षष्ठी होती है वो तिंगंत के योग में नहीं होती है, वह कृदंत के योग में षष्ठी होती है। तो जब पाकः कृदंत है उसमें जो पच धातु से जो घय से जो सिद्ध क्रिया अर्थ निकलता है उसी के आधार पर जो है कर्म मान करके षष्ठी करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानेंगे, अध्याहृत क्रिया भवती क्रिया के आधार पर करेंगे तो कर्तिकर्मणोकृति से षष्ठी होगी ही नहीं, क्योंकि फिर वह आख्यात का योग होगा, कृदंत का योग नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं है, अगर आख्यात के योग में आप करना भी चाहेंगे षष्ठी तो भी एक सूत्र है नौ लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये कहता है नौ ल उ क, ल का अर्थ है लादेश, माने लकार के स्थान में जो आदेश हो, जैसे भवती अगर अध्याहार करते हैं तो लट के स्थान में टिप लाएंगे तो वह लादेश हो जाएगा, और उसके योग में अगर षष्ठी करना भी चाहेंगे तो नौ लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ नाम षष्ठी का निषेध कर देगा। तो इस तरह से ओदनस्य पाकः में, ओदनस्य में जो षष्ठी हुई है कर्म अर्थ में षष्ठी हुई है, और कर्म बनने के लिए क्रिया का होना जो है जरूरी है, तभी उसमें उसका अन्वय होगा, क्रियाजनकत्व आएगा। तो यही जो है प्रमाण है तथा अभिधाने, माने घय प्रत्यय से सिद्ध अवस्था और धातु से साध्य अवस्था प्रतीत होती है, इसमें ओदनस्य पाकः में ओदनस्य की षष्ठी ही प्रमाण है। एवं रीत्या काष्ठेह पाकः इत्यादि इष्टमेव, काष्ठेह पाकः, काष्ठेह में करण कारक है तो यहाँ भी करण कारकत्व आ जाएगा काष्ठेह में, क्योंकि पाकः से पच धातु से जो है साध्या क्रिया अर्थ होगा और उसमें उसका अन्वय होगा। एवं फलांशो भी धातुना असत्वावस्थापन्न एव उच्यते, ताकि धातु से जो दोनों अंश होता है फल अंश और व्यापार अंश, तो दोनों ही असत्व अवस्था वाला ही निकलता है, फल भी असत्व अवस्था वाला धातु से निकलता है और व्यापार भी असत्व अवस्था वाला निकलता है। असत्व अवस्था वाला मतलब उसमें लिंग संख्या का अन्वय नहीं होगा। अतएव स्तोकम पचति, ये स्तोकम पचति में पच धातु से असत्व अवस्था वाला क्रिया अर्थ निकलता है, उसमें स्तोक पदार्थ का अन्वय करने के कारण नपुंसक होता है और द्वितीया विभक्ति होती है। उसी तरह से स्तोकम पाकः में भी, पाकः में जो पच धातु है उससे भी असत्व अवस्था वाली क्रिया अर्थ निकलेगा और उसमें अन्वय होने के कारण द्वितीया और नपुंसक होगा स्तोकम पाकः। तो स्तोकम पचति और स्तोकम पाकः, चाहे तिंगंत हो चाहे घयंत हो, पच धातु से हमेशा जो है असत्व अवस्था वाली ही क्रिया अर्थ होगा और उसमें अन्वय होने के कारण स्तोक पदार्थ में द्वितीया भी होगी और नपुंसकत्व भी होगा। इस तरह से 14वीं कारिका का व्याख्यान संपन्न होता है।